मतलब प्राचीन रोम की सड़कों की अगर हम कल्पना करें ना, तो अगर कोई इंसान अचानक से समाज के सारे स्थापित नियमों को मानने से इनकार कर दे, तो उसे सिर्फ कोई कानूनी सजा नहीं मिलती थी।
हाँ बिल्कुल, उसे तो एक तरह से सामाजिक रूप से मृत ही मान लिया जाता था।
एकदम सही कहा आपने। मतलब वो उन परंपराओं और रीति रिवाजों को पूरी तरह छोड़ दे जिन्हें पूरा समाज पवित्र मानता है, तो रातों रात उसके अपने ही पड़ोसी उसके दुश्मन बन जाते थे।
और उसे भारी सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करना पड़ता था,
यहाँ तक कि शारीरिक दुर्व्यवहार भी।
हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जिसकी आज के दौर में हम आसानी से कल्पना भी नहीं कर सकते।
बिल्कुल नहीं कर सकते।
उस समय का समाज बहुत ही कसकर बुना हुआ था, मतलब इंसान की अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती थी।
तो फिर पहचान कैसे होती थी?
उसकी पहचान उसके परिवार से, उसके समुदाय से और उसके देवताओं से होती थी। समाज से कटने का मतलब अक्सर भुखमरी और मौत ही होता था।
बाप रे, और आज हम इसी दिलचस्प लेकिन खौफनाक ऐतिहासिक सच्चाई का विस्तार से विश्लेषण करेंगे इस गहन चर्चा में।
बिल्कुल।
डॉक्टर डेविड डी सिल्वा के एक बेहतरीन लेक्चर के आधार पर हम पहली सदी के रोमन साम्राज्य की जड़ों को समझेंगे। विशेष रूप से हम नए नियम यानी न्यू टेस्टमेंट की एक किताब जिसे 1 पीटर कहते हैं, उसके इर्द गिर्द के सामाजिक ढांचे को खंडालेंगे।
हाँ, और ये बहुत ही जरूरी विषय है।
हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक छोटे और भयानक रूप से सताए हुए समूह ने परिवार और नातेदारी की पूरी अवधारणा को जड़ से उखाड़ फेंका।
एकदम सही, और एक ऐसी सामाजिक क्रांति को जन्म दिया जिसने अंततः रोम जैसे विशाल साम्राज्य की नींव हिला दी।
तो चलिए ऐसे समझते हैं।
इस पूरी घटना को समझने के लिए न हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस समय के माहौल को महसूस करना होगा। हम आधुनिक पश्चिमी तुर्की के 5 रोमन प्रांतों की बात कर रहे हैं।
अच्छा, पश्चिमी तुर्की।
हाँ, यहाँ रहने वाले जो शुरुआती ईसाई थे वे कोई हथियारबंद विद्रोही या राजनीतिक क्रांतिकारी नहीं थे।
वे तो आम लोग ही थे ना?
बिल्कुल आम लोग थे जिन्होंने एक नया विश्वास अपना लिया था, लेकिन परेशानी ये थी कि इस नए विश्वास ने उन्हें उन सभी सामाजिक गतिविधियों से काट दिया जो एक रोमन नागरिक के लिए बहुत जरूरी थी।
तो किस तरह की गतिविधियां? मतलब क्या वो सिर्फ मंदिर जाना छोड़ रहे थे?
अरे, बात सिर्फ मंदिर जाने की नहीं थी। प्राचीन रोम में धर्म, राजनीति और मनोरंजन सब एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए थे।
अच्छा, सब एक साथ।
हाँ, जैसे अगर आप अपने गिल्ड या व्यापारिक संघ की दावत में जा रहे हैं तो उसकी शुरुआत किसी देवता को मांस चढ़ाने से होगी।
हाँ, समझ रहा हूँ।
और अगर आप किसी खेल या थिएटर में जा रहे हैं तो वो अक्सर सम्राट की पूजा का हिस्सा होता था।
ओहो, तो जब इन ईसाइयों ने इन सब चीजों में भाग लेने से मना कर दिया
तो उनके पड़ोसियों को लगा कि ये लोग समाज के ताने बाने को नष्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उन्हें लगा कि ये देवताओं को नाराज कर रहे हैं।
जाहिर है, तो फिर पड़ोसियों ने क्या किया?
इसीलिए पड़ोसियों ने उन्हें शर्मिंदा करना, तिरस्कार करना और सामाजिक रूप से काटना शुरू कर दिया ताकि वे किसी तरह वापस पुराने ढर्रे पर लौट आए।
तो मतलब ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं था, ये तो उनके अस्तित्व पर सीधा हमला था ना?
बिल्कुल।
मुझे ये समझना है कि उस भयानक सामाजिक दबाव से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि अगर पूरा समाज आपके खिलाफ हो जाए तो कोई भी इंसान टूट जाता है।
सच कहा आपने, और यहीं पर डॉक्टर डी सिल्वा का शोध बताता है कि 1 पीटर के लेखक ने इन लोगों को एक नई मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रणनीति दी।
और वो रणनीति क्या थी?
उन्हें ये बार बार याद दिलाना कि वे अब एक नए परिवार का हिस्सा हैं।
एक नया परिवार।
यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है वो है शर्म और सम्मान, यानी ऑनर और शेम की संस्कृति।
हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है।
प्राचीन दुनिया में आपका बैंक बैलेंस उतना मायने नहीं रखता था जितना कि समाज में आपका सम्मान। अगर समाज ने आपको अपमानित कर दिया है तो आपकी कोई कीमत नहीं रही।
तो 1 पीटर इसी बात पर प्रहार करता है।
एकदम सीधे तौर पर वो सुसमाचार को स्वीकार करने को एक दूसरे जन्म के रूप में प्रस्तुत करता है।
एक मिनट, दूसरा जन्म, क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक बात नहीं है जो धार्मिक ग्रंथों में अक्सर सुनने को मिलती है? मतलब जब आपको मोहल्ले का दुकानदार राशन नहीं दे रहा हो तो ये दूसरे जन्म की कविता आपका पेट कैसे भरेगी?
हाँ, ये सवाल उठना बहुत लाजमी है, लेकिन ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक पूरी तरह से नया यथार्थ था जिसे वे जी रहे थे।
अच्छा।
लेखक समझाता है कि ये जन्म एक अविनाशी बीज से हुआ है। यहाँ यशाया का एक बहुत ही शक्तिशाली संदर्भ दिया गया है।
क्या संदर्भ है वो?
वो कहते हैं कि सारा शरीर घास के समान है और उसकी सारी महिमा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाते हैं, लेकिन ईश्वर का वचन हमेशा रहता है।
अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है।
हाँ, ये उन्हें बता रहा था कि जिस प्राकृतिक परिवार या समाज ने उन्हें जन्म दिया और जो अब उन्हें ठुकरा रहा है, वो पूरी तरह से अस्थाई है। वो घास की तरह एक दिन सूख जाएगा।
इसका मतलब है कि प्राकृतिक जन्म से उन्हें जो विरासत मिली थी, यानी उनकी अज्ञानता, उनका सामाजिक रुतबा और वे ईश्वरविहीन परंपराएं, वे सब वास्तव में बेकार थीं।
बिल्कुल सही पकड़े आप।
और ये नया जन्म उन्हें एक ऐसी विरासत दे रहा है जो कभी मिटी नहीं सकती।
और यहीं पर उन्होंने रोमन समाज के उस स्टेटस वाले सिस्टम को पूरी तरह से पलट दिया।
कैसे?
देखिए, समाज उन्हें अपमानित कर रहा था, उनका सम्मान छीन रहा था, लेकिन एक पीटर उन्हें सिखा रहा है कि तुम्हारा असली सम्मान तुम्हारे पड़ोसियों या तुम्हारे पुराने परिवार से तय नहीं होता।
तो किससे तय होता है?
वो सम्मान सीधे ब्रह्मांड के रचयिता से आ रहा है।
अरे, ये तो समाज द्वारा दिए गए रुतबे को एक तरह से हैक करने जैसा हो गया।
हैक? हाँ, कह सकते हैं।
मतलब सोचिए, दुनिया ने आपके चेहरे पर दरवाजे बंद कर दिए, आपको सबसे नीचा दिखा दिया, लेकिन आपने एक ऐसा नया सिस्टम, एक ऐसा नया परिवार बना लिया जहाँ खुद ब्रह्मांड का रचयिता आपको VIP का दर्जा दे रहा है।
बिल्कुल सही।
जब ईश्वर ही आपको स्वीकार कर ले तो गली मोहल्ले के लोगों के ताने वास्तव में बहुत छोटे लगने लगेंगे।
ये एक बहुत ही सटीक उपमा है, लेकिन आपको बता दूं, ये हैक सिर्फ दिमाग के अंदर चलने वाला कोई मनोवैज्ञानिक खेल नहीं था, इसे जमीन पर उतारना था।
हाँ, क्योंकि सोचने भर से तो काम नहीं चलेगा ना।
सही कहा। अगर आप एक नया परिवार हैं, तो आपको एक परिवार की तरह बर्ताव भी करना होगा, और यहीं से इस नए समुदाय के नियम प्राचीन दुनिया के नियमों से सीधे टकराने लगे।
तो चलिए इस व्यावहारिक हिस्से पर आते हैं। ये नया परिवार एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहा था? मैंने ऐतिहासिक दस्तावेजों में फिलाडेल्फिया शब्द का जिक्र पढ़ा है।
हाँ, फिलाडेल्फिया।
आज के समय में तो हम फिलाडेल्फिया को अमेरिका के एक बड़े शहर के नाम से जानते हैं, लेकिन उस दौर में इसका अर्थ कुछ और ही था ना?
बिल्कुल। ग्रीक भाषा में फिलाडेल्फिया का अर्थ है भाईचारे का प्रेम।
भाईचारे का प्रेम
चाहिए, कैसे एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए।
तो फिर एक पीटर में नया क्या था?
एक पीटर में फिलाडेल्फिया की जो परिभाषा दी जा रही थी, वो बहुत ही क्रांतिकारी थी। वे इस भाईचारे के प्रेम को उन लोगों पर लागू कर रहे थे जो जन्म से एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे।
अजनबियों पर?
हाँ, अलग अलग जातियों, अलग अलग वर्गों, गुलामों और स्वतंत्र नागरिकों के बीच फिलाडेल्फिया की उम्मीद की जा रही थी।
लेकिन उस समय के हिसाब से ये कितना खतरनाक और अस्वाभाविक रहा होगा। आज के समय में हम किसी को भी बहुत आसानी से भाई कह देते हैं।
हाँ, आज तो ये आम बात है।
लेकिन प्राचीन रोम की संस्कृति में अगर कोई गैर रिश्तेदार आपका अपमान करता था, तो अपना रुतबा बचाने के लिए बदला लेना अनिवार्य माना जाता था। सहिष्णुता जैसी कोई चीज प्रतिस्पर्धियों के बीच होती ही नहीं थी।
नियम था कि प्यार कई पापों को ढांप लेता है।
प्यार पापों को ढांप लेता है,
यानी अगर आपके इस नए भाई या बहन से कोई गलती हो भी जाए, तो आप उसकी निंदा करके समाज में उसका तमाशा नहीं बनाएंगे, बल्कि आप उसे माफ करेंगे।
वाह।
और इस पूरी व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए जो सबसे बड़ी जीवन रेखा थी, वो थी आतिथ्य, यानी हॉस्पिटैलिटी।
आतिथ्य, मुझे थोड़ा समझाइए कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? आज तो आतिथ्य का मतलब बस घर आए मेहमान को चाय पानी पिलाना होता है।
उस समय आतिथ्य जीवन और मृत्यु का सवाल था।
अच्छा, इतना गंभीर?
हाँ, यात्रा करना बेहद खतरनाक था। रास्ते लुटेरों से भरे होते थे और आज की तरह रुकने के लिए सुरक्षित सराय या होटल नहीं होते थे। ऐसे में अगर एक शहर से दूसरा ईसाई यात्री आ रहा है, तो वो सीधे जाके किसी अनजान ईसाई का दरवाजा खटखटाता था।
बिना जाने?
हाँ, बिना जाने। इतिहासकार एडविन हाच लिखते हैं कि रोमन साम्राज्य के सभी बड़े व्यापारिक मार्गों पर अजनबियों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन ईसाई नाम रखने वाला हर अजनबी आतिथ्य का हकदार था।
क्या बात है,
ये एक महान भ्रातृत्व बन गया था।
ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। आप एक अनजान व्यक्ति के लिए अपने घर का दरवाजा खोल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दोनों एक ही कल्पित नातेदारी या फिलाडेल्फिया का हिस्सा हैं।
बिल्कुल।
और मैंने पढ़ा है कि अक्सर पूरे के पूरे प्राकृतिक परिवार एक साथ इस नए विश्वास में आ जाते थे।
हाँ, जब किसी घर का मुखिया यानी पैटरफेमिलियस धर्म बदलता था, तो उसका पूरा परिवार, उसके गुलाम, उसके नौकर, सभी उस नए समुदाय का हिस्सा बन जाते थे।
अच्छा।
यही घर बाद में शुरुआती चर्च की सभाओं का केंद्र भी बन गए।
लेकिन असली टकराव तो तब शुरू होता होगा जब परिवार का मुखिया नहीं बल्कि घर का कोई अन्य सदस्य इस नए धर्म को अपना ले।
हाँ, वो सबसे मुश्किल स्थिति होती थी।
मान लीजिए कि एक पत्नी ने ईसाई धर्म अपना लिया, लेकिन उसका पति, जो घर का पूर्ण अधिकारी है, वो अभी भी पुरानी रोमन परंपराओं को मान रहा है, तब क्या होता था?
ये बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी। एक पीटर के तीसरे अध्याय के शुरुआती हिस्से में पत्नियों के लिए दिए गए निर्देशों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है।
अच्छा, क्या निर्देश थे?
अगर कोई इसे आज सिर्फ सतही तौर पर पढ़े तो ये निर्देश बहुत ही दकियानूसी और पारंपरिक लगते हैं।
जैसे कि
इसमें पत्नियों को अपने पतियों के अधीन रहने, शांत रहने और बाहरी साज श्रृंगार के बजाय आंतरिक सुंदरता पर ध्यान देने को कहा गया है। सारा और इब्राहिम का उदाहरण देकर उन्हें सारा की बेटियां कहा गया है।
एक मिनट रुकिए, अगर उन्हें सिर्फ शांत रहने और पतियों की हर बात मानकर अधीन रहने को कहा जा रहा है तो इसमें क्रांति या सामाजिक बदलाव कहाँ है?
ये सवाल अक्सर उठता है।
ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक आदर्श रोमन पत्नी को होना चाहिए था।
ये सिर्फ बाहर से देखने पर वैसा लगता है, ये वास्तव में एक बहुत ही रणनीतिक कदम था।
रणनीतिक कदम?
हाँ, ताकि पतियों को बिना एक भी शब्द कहे उनके अच्छे व्यवहार से जीता जा सके। लेकिन इसी निर्देश के अंत में एक बहुत ही खतरनाक पंक्ति छिपी हुई है जिसने पूरी व्यवस्था को चुनौती दी।
वो पंक्ति क्या थी?
लेखक पत्नी से कहता है कि किसी भी धमकी से न डरो।
धमकी से न डरो, इसका असल में क्या मतलब था? उसे किस बात का डर था?
इसे समझने के लिए हमें फिर से रोमन घर के ढांचे को देखना होगा। प्लूटार्क ने विवाह पर सलाह में स्पष्ट रूप से लिखा था कि एक पत्नी का अपना कोई अलग दोस्त नहीं होना चाहिए। और देवताओं से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, इसलिए पत्नी का यह सामाजिक और कानूनी कर्तव्य था कि वो केवल उन्हीं देवताओं की पूजा करें जिन्हें उसका पति पूजता है।
अच्छा, ये नियम था?
हाँ, हर रोमन घर में एक घरेलू वेदी या छोटा मंदिर होता था जहाँ पति देवताओं और पूर्वजों को शराब और धूप चढ़ाता था।
ओह, अब मुझे बात समझ में आ रही है। तो ये जो ईसाई पत्नियां थीं, वे अब उस घरेलू वेदी के सामने झुकने से इनकार कर रही थीं।
एकदम सही, वे उन घरेलू अनुष्ठानों में भाग लेने से मना कर रही थीं। वे नागरिक पूजाओं में शामिल नहीं हो रही थीं।
बाप रे।
और इससे भी बड़ी बात, वे घर से बाहर निकलकर अजनबियों के एक समूह के साथ मिलने जा रही थीं, वो भी पति की इजाजत या निगरानी के बिना।
ये तो बहुत बड़ा कदम था।
उस समय के रोमन पुरुष के लिए पत्नी का ये व्यवहार सिर्फ धार्मिक मतभेद नहीं था, ये घर के मुखिया के अधिकार पर सीधा हमला था, एक तरह का देशद्रोह था।
तो ये एक तरह का मौन विरोध था, मतलब एक साइलेंट प्रोटेस्ट।
हाँ बिल्कुल।
पत्नी अपने पूरे व्यवहार से कह रही है कि मैं हर चीज में एक आदर्श पत्नी बनूंगी, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगी, घर का पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन जब बात मेरे ईश्वर की आएगी तो मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी, चाहे तुम कितना भी डरा लो।
हाँ, यही उनका संदेश था।
ये तो सच में प्राचीन दुनिया का सविनय अवज्ञा आंदोलन लगता है, मतलब सिविल डिसोबीडियंस।
ये सविनय अवज्ञा ही थी और यह स्पष्ट कर रही थी कि ईश्वर के प्रति वफादारी समाज के सबसे मजबूत बंधन यानी पति पत्नी के बंधन से भी ऊपर है।
ये तो चौंकाने वाला है। लेकिन अगर पत्नियों का ये कदम खतरनाक था तो समाज के सबसे निचले पायदान यानी गुलामों के लिए जो निर्देश थे वे तो मुझे और भी ज्यादा परेशान करते हैं।
अब किस निर्देश की बात करें?
जब मैं 1 पीटर का वो हिस्सा पढ़ता हूँ जहाँ ओइकेताई यानी घरेलू गुलामों को अनुचित और क्रूर मालिकों के प्रति भी अधीन रहने को कहा गया है तो मुझे बहुत अजीब लगता है।
मैं समझ सकती हूँ।
मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूँ, क्या ये ग्रंथ गुलामी का समर्थन कर रहा है? क्या ये लोगों से कह रहा है कि शोषण सहते रहो और चुप रहो?
देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक और स्वाभाविक सवाल है जो किसी भी आधुनिक श्रोता के मन में आएगा।
तो इसका जवाब क्या है?
डॉक्टर डी सिल्वा अपने विश्लेषण में ये स्पष्ट करते हैं कि 1 पीटर कोई मुक्तिवादी या लिबरेशनिस्ट ग्रंथ नहीं है। ये गुलामों को हथियार उठाने या रोम की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं उकसा रहा है।
क्यों नहीं?
क्योंकि उस समय ऐसा करने का मतलब था तत्काल और भयानक मौत।
हाँ, ये भी है।
लेकिन ये ग्रंथ कुछ ऐसा कर रहा है जो प्राचीन मानसिकता के लिए किसी खूनी क्रांति से भी ज्यादा खतरनाक था। लेखक इन गुलामों को नैतिक अधिकार यानी मॉरल एजेंसी सौंप रहा है।
नैतिक अधिकार एक गुलाम के पास? रोम में तो गुलामों की कोई हैसियत ही नहीं होती थी, वे बस बोलने वाले औजार माने जाते थे।
ठीक कहा आपने, प्राचीन रोम में एक गुलाम की अपनी कोई अंतरात्मा नहीं होती थी, उसका काम सिर्फ आदेश का पालन करना था।
हाँ।
लेकिन 1 पीटर गुलामों से कह रहा है कि वे खुद ये तय करें कि पाप क्या है और पुण्य क्या है।
अच्छा,
जब एक मालिक अपने गुलाम को किसी देवता की मूर्ति के सामने झुकने को कहता है और गुलाम ईश्वर की आज्ञा मानकर अपने मालिक की अवज्ञा करता है
और उसके बदले में सजा भुगतता है,
हाँ, तो वो वास्तव में ईश्वर की नजरों में सही काम कर रहा है। वो एक इंसान के रूप में अपने फैसले खुद ले रहा है।
ये तो बहुत ही गहरा बदलाव है। मतलब एक गुलाम जिसकी समाज में कोई हैसियत नहीं थी, वो अब ये तय कर रहा है कि उसका मालिक नैतिक रूप से गलत है।
बिल्कुल,
वो मालिक की क्रूरता को सह रहा है, लेकिन आत्मा के स्तर पर वो स्वतंत्र है।
और इससे भी बड़ा भूचाल तब आता है जब एक पीटर इस अन्याय सहने वाले लेकिन ईश्वर के प्रति वफादार रहने वाले गुलाम को सभी ईसाइयों के लिए सबसे बड़ा आदर्श रोल मॉडल बना देता है।
सभी के लिए?
हाँ, प्राचीन समाज में स्वतंत्र नागरिक कभी किसी गुलाम से कुछ नहीं सीखते थे, लेकिन यहाँ एक सताए हुए गुलाम को ईसा मसीह के समान बताया जा रहा है और घर के मुखियों से कहा जा रहा है कि वे इस गुलाम के आचरण से सीखें।
मेरा तो दिमाग ही घूम रहा है। समाज का सबसे निचला वर्ग, जिसे इंसान भी नहीं माना जाता था, उसे अचानक आध्यात्मिक रूप से सबसे ऊंचे दर्जे पर बिठा दिया गया।
यही तो इस संदेश की ताकत थी।
और शायद इसी समतावादी सोच का असर हमें पतियों के लिए दिए गए निर्देशों में भी देखने को मिलता है।
बिल्कुल, और यहीं पर ग्रीक भाषा के अनुवाद की एक बहुत ही दिलचस्प समस्या सामने आती है।
कैसी समस्या?
अगर हम कुछ आधुनिक अंग्रेजी अनुवादों को पढ़ें, तो ऐसा लगता है जैसे पतियों को कहा जा रहा है कि अपनी पत्नियों के साथ समझदारी से रहो और उन्हें कमजोर बर्तन समझकर उनका सम्मान करो, क्योंकि वे भी जीवन के वरदान की वारिस हैं।
हाँ, इसे पढ़ने पर तो ऐसा लगता है जैसे पत्नी को सम्मान देना पति का कोई बहुत बड़ा बड़प्पन या दया है।
लेकिन मूल ग्रीक भाषा की संरचना कुछ और ही इशारा कर रही है।
तो मूल भाषा में क्या है?
मूल ग्रीक संरचना के अनुसार पति को पत्नी का सम्मान करना है, क्योंकि ये उसका हक है। वे दोनों ईश्वर के उपहार की सह उत्तराधिकारी हैं।
सह उत्तराधिकारी?
हाँ, को एयर्स। प्राचीन दुनिया में पति और पत्नी का रिश्ता हमेशा पदानुक्रमित होता था, यानी एक हमेशा ऊपर और दूसरा हमेशा नीचे। लेकिन सह उत्तराधिकारी शब्द एक भाई बहन वाले समतावादी नजरिए को सामने लाता है।
तो इसका मतलब है कि विवाह के उस कड़े असमान और पितृसत्तात्मक ढांचे के भीतर समानता के बीज बड़ी चालाकी से बोए जा रहे थे।
एकदम सही।
जब एक पति अपनी पत्नी को या एक स्वतंत्र नागरिक अपने गुलाम को चर्च की सभा में एक भाई या बहन के रूप में देखता है, तो बाहर की वो पुरानी ऊंच नीच वाली व्यवस्था ज्यादा दिन तक टिकी नहीं सकती।
यही वो असली क्रांति थी। ये बाहर से हथियार उठाकर लड़ने वाली क्रांति नहीं थी, ये व्यवस्था को भीतर से खोखला करके एक नई और मानवीय व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया थी।
हमने इतिहास की बहुत गहराई में जाकर देखा कि कैसे इन प्राचीन नियमों ने उस समय के लोगों को न केवल जीवित रखा बल्कि एक बेहद मजबूत समुदाय में बदल दिया।
हाँ,
लेकिन ये सब सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर डी सिल्वा के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को हम आज की दुनिया के लिए कैसे प्रासंगिक मान सकते हैं?
डॉक्टर डी सिल्वा का निष्कर्ष आज के हमारे समुदायों के लिए एक बहुत बड़ा आईना है।
कैसे?
वे कहते हैं कि आज हमारे आसपास के समुदाय, चाहे वे धार्मिक हो, सामाजिक हो या हमारे दफ्तर हो, अक्सर बहुत सौहार्दपूर्ण होते हैं।
हाँ, हम मिलते जुलते हैं,
हम एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं, हंसकर बात करते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा संकट आता है तो वे एक सच्चे परिवार की तरह काम नहीं करते।
ये तो सच है, हम एक दूसरे के जीवन में उतना गहराई से शामिल ही नहीं होते।
तो कल्पना कीजिए कि अगर कोई समुदाय सच में इस कल्पित नातेदारी को अपना ले और खून के रिश्तों से ऊपर उठकर एक दूसरे को असल में अपना भाई बहन माने तो क्या होगा?
बहुत कुछ बदल जाएगा।
अगर किसी अकेली माँ को अपने बच्चों की देखभाल के लिए पूरे समुदाय का सहारा मिले ताकि वो आराम से काम पर जा सके,
या सोचिए अगर किसी समुदाय के दो सदस्यों के बीच भयंकर झगड़ा हो जाए तो वे सीधे कोर्ट कचहरी ना जाएं, उनका विवाद वैसे ही सुलझाया जाए जैसे हम अपने ही परिवार में करते हैं।
बिल्कुल,
हम अपने सगे भाई को छोड़कर आगे नहीं बढ़ जाते, हम उसे साथ बिठाते हैं, बात करते हैं।
और सबसे बड़ी बात, अगर कोई बहुत बड़ी गलती करे, कोई ऐसा काम करे जिससे समाज नाराज हो जाए, तो आज का चलन क्या है?
आज तो बस उसे अपमानित करना, उसकी शर्म का तमाशा बनाना और उसे कैंसिल करके बाहर निकाल देना, यही होता है।
हाँ, लेकिन अगर ये प्राचीन मॉडल लागू हो तो समुदाय उसकी शर्म को छुपाकर उसे फिर से खड़ा करने में मदद करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने सगे भाई या बहन को दलदल से बाहर निकालने के लिए करते हैं।
यही वो असली ताकत है जिसने रोमन साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था।
एकदम सही।
इतिहास गवाह है कि दूसरी और तीसरी सदी के जो गैर ईसाई लोग थे, जब वे इन शुरुआती ईसाइयों को देखते थे तो वे उनकी कोई धार्मिक किताब नहीं पढ़ते थे।
हाँ, वे तो बस उनका व्यवहार देखते थे।
वे बस उनके व्यवहार को देखकर कहते थे कि देखो वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं।
और आज के समय में जब पूरी दुनिया डिजिटल रूप से तो हर वक्त जुड़ी हुई है, लेकिन हकीकत में लोग भयंकर अकेलेपन का शिकार है, तब ये प्राचीन नातेदारी का मॉडल बहुत प्रासंगिक हो जाता है।
सच में
ये सिर्फ एक ऐतिहासिक या धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि इस आधुनिक अकेलेपन और अलगाव के खिलाफ सबसे बेहतरीन मारक, एक शक्तिशाली एंटीडोट है।
तो पहली सदी के पश्चिमी तुर्की के उन सताए हुए लोगों से शुरू हुई यह कहानी सिर्फ कोई सर्वाइवल गाइड नहीं थी।
बिल्कुल नहीं,
यह समाज को देखने के नजरिए में एक ऐसा भूचाल था जिसने खून के रिश्तों, जाति और पैसे से ज्यादा महत्व समान मूल्यों और एक दूसरे के प्रति सच्ची करुणा को दिया।
सही कहा आपने।
और इसी के साथ हम इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक विचार सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। इस पूरी चर्चा के आधार पर जरा सोचिए, अगर कल से ही हम अपने कार्यस्थलों, अपने पड़ोस या यहाँ तक कि अपने पसंदीदा ऑनलाइन समूहों में इस कल्पित नातेदारी के सिद्धांत को सच में लागू कर दें तो क्या होगा?
बहुत दिलचस्प सवाल है।
अगर हम अपने सहकर्मियों या अजनबियों को सिर्फ एक नेटवर्क का हिस्सा न मानकर या सिर्फ काम निकालने का जरिया न मानकर सच्चे अर्थों में अपना परिवार मान लें, तो हमारी ये आधुनिक संस्थाएं जो आज इतनी ठंडी और यांत्रिक लगती हैं, उनका पूरा ढांचा किस तरह रातोंरात बदल जाएगा, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।